ञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीकृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानन्दा श्रीअद्वैतगदाधर शिवासदिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। सो आई एम ऑनर्ड एंड हैप्पी टू बी इनवाइटेड बाय ऑल ऑफ यू इन कन्हैया देश। जूम प्लेटफॉर्म इज कनेक्टिंग अस राइट डायरेक्टली टू कन्हैया देश राइट नाउ स्ट्रेट। सो दैट इज अ गिफ्ट ऑफ कोरोना। And Corona has connected far, far people close to the heart. And we can see them daily, every moment we can see them, interact with them in large numbers. So it's like a family life and on a different level has started because of Zoom and Corona. It's very good. What we could not do for a long time before, we are able to do very easily now because of Corona. So Corona is not all that bad. Corona is also lot of good things have happened. I am on this spiritual platform. If you want to understand everything, then everything happens for good. And everything that happens is good for us. That is our understanding. Huh? All the worst things in life, all the worst things in life turn out to be good for those who love God. जिंदगी में जो सबसे खराब चीजें होती हैं, जो हमको खराब लगती है, हमारे इंद्रियों को खराब लगती हैं, वो हमारे लिए फाइनली एकदम अच्छी तरह से उनका परिवर्तन होता है हमारे अच्छे के लिए, जब हम भगवान पर प्रेम करते हैं। तो भगवान पर प्रेम करने वाले लोगों के लिए जो जो बुरी घटनाएं होती हैं वो उनके कल्याण के लिए हो जाती हैं फाइनली, उससे उनका कल्याण ही हो जाता है। वैसे हमारे जिंदगी में भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो लगती है कि बहुत बुरी हुई हैं। लोग भी कहते हैं कि अरे आपके लिए ऐसा क्यों होना है, ऐसा क्यों होना चाहिए, आपके लिए नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन वास्तव में वो जो घटनाएं हुई हैं और हो रही हैं वो सब हमारे परम कल्याण के लिए ही बनाई गई है, स्पेशली डिजाइंड टेलर मेड। जब हम लोग रेडीमेड कपड़ा लेते हैं तो वो एक फिक्स साइज का होता है, लेकिन टेलर के पास जाते हैं ना तो वो अपने हमारे साइज का, आज मेरा पेट कितना बड़ा है वो साइज का शर्ट बनाएगा वो। कल मैं वेट कम करूंगा तो अलग है, लेकिन आज मेरा जो साइज है वो बनाएगा, फिट बनाएगा, उसको बोलते हैं कस्टमाइज्ड, हाँ कस्टमाइज सर्विस। तो वैसे हमारे सबके जीवन में भगवान के द्वारा जो भी होता है वो हमारे परम कल्याण के लिए ही होता है। जो भी कुछ हो रहा है आज, जो भी कुछ हो रहा है वो भगवान के द्वारा ऐसी योजना है कि वो हमारे परम कल्याण के लिए। तो जिन लोगों को भगवान पर प्रेम है उनको वो साक्षात्कार होता है कि कैसे ये हमारे लिए अच्छा था। और जो भगवान पर प्रेम नहीं करते हैं या नहीं श्रद्धा रखते हैं उनके लिए वो बुरा ही लगता है, बुरा ही लगता है। बार बार वही कहेंगे क्या भगवान ने किया, भगवान ने किधर, भगवान है ऐसा क्यों करना चाहिए था, ऐसे प्रश्न करते रहेंगे। तो ये मैटर कैसा है, ये श्रद्धा का मैटर है। श्रद्धा है तो हर चीज आपको लगेगी कि हमारे लिए अच्छा है। और कुछ कुछ चीजें हमारे लिए हो रही है और हमको अभी तक वो समझ में नहीं आया है कि हमारे लिए कैसा अच्छा है, लेकिन फिर भी मन में श्रद्धा है कि हमको समझ में नहीं आता होगा लेकिन वो हमारे लिए अच्छा ही है। कैसे अच्छा है कुछ समय के बाद में पता चलेगा, लेकिन श्रद्धा मन में ये कहती है कि नहीं ये अच्छा ही होगा। कभी कभी हमारी उंगली जो है ना वो अटक जाती है दरवाजे में और हम बहुत जोर से रोते हैं, बाप रे नाखून नीला हो गया अभी, लेकिन वो कैसे अच्छा है समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में समझेगा कैसा अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल वो एक बार अकबर और बीरबल बैठे थे और बीरबल बात कर रहे थे, अब अकबर फल काट के खुद ही खा रहे थे, खुद रखा था फल वो अपने आप से काट के खा रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन बात करते करते दुर्लक्ष हो गया तो उसका फल के अलावा उंगली कट गया। तो बीरबल ने कहा जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो अकबर को इतना गुस्सा आया, अकबर ने उसको बोला क्या समझते हो, मेरा उंगली में खून आ रहा है, इधर दर्द हो रहा है और तुम बोल रहे हो अच्छा हो रहा है, इसको अरेस्ट करो। तो उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। और तो बीरबल ने कहा जो भी होता है अच्छे के लिए अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा अच्छा भगवान की दया सब अच्छा होता है, तो ये अच्छा है ना, जाओ जेल में जाओ बैठे उधर जाके। और कुछ दिन के बाद में बीरबल जेल में है, अकबर अपना शिकार खेलने के लिए जाता है अकेला, और जंगल में आके फंस जाता है कहीं, और अंधेरा होता है तो जंगल में जाके निकलने का कोशिश करते हैं तो अंदर फंस जाते हैं, और एक ऐसे जमात के अंदर पहुंच जाते हैं जो क्या बोलते हैं ट्राइबल्स, मतलब भिन्न लोग होते हैं एकदम, रांटी लोग, तो जंगल में उनका निवास है। और राजा को पकड़ लेते हैं सब लोग मिलकर, राजा वीर होता है लेकिन वो बहुत फरे होते हैं, वो पकड़ते वो अरेस्ट करते, बोलते हैं देवी के लिए बलि देने के लिए अच्छा मनुष्य मिला है आज, तो कहते जाके इसको स्नान करा के लेके आओ। तो बांध के उसको अरेस्ट करके स्नान कराते हैं, फिर वो एक आदमी के सामने खड़ा करते हैं जो उनका मुखिया होता है, बोलता है इसको चेक करो ये बलि योग्य है कि नहीं है। तो पूरा चेक करता है तो उसको उंगली कटी मिलती है, तो बोलते हैं जिसका शरीर भंग हुआ है वो इस बलि के काम का नहीं हो सकता है, उसका शरीर पूरा इंटैक्ट होना चाहिए। तो जैसे ही देखते हैं कि उसका उंगली कटा हुआ है तो उसको छोड़ देते हैं कि ये बलि के योग्य नहीं, जाओ चले जाओ। तो उसको उस दिन पता चलता है, अरे बाप रे बीरबल ने कहा था जो भी होता है वो अच्छा होता है, आज समझ में आया इतना दिन के बाद में। और बहुत खुश होकर घर जाता है और पहले ही बीरबल को छुड़ा देता है जेल से, और बीरबल को मुक्त करके बीरबल को पूछते हैं बीरबल मुझे आज समझ में आया कि मेरा उंगली कटा हुआ मेरे लिए अच्छा कैसा था, अगर उंगली नहीं कटी होती तो मैं आज मर जाता सबके बीच में, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुमको उस जेल में डाल दिया वो अच्छा कैसे हो गया, हाउ इट इज गुड फॉर यू दैट यू आर इन जेल। बोले महाराज अगर मैं जेल में नहीं होता तो मुझे आप हर बार लेके जाते शिकार करने के लिए, यू आर ऑलवेज टेकिंग मी विथ यू, और आपकी उंगली कटी होती है मेरी उंगली कटी नहीं है तो मुझे काट लेते वो लोग, बलि मेरी चढ़ती, तो आपने मुझे जेल में डाला इसलिए मैं बच गया, मैं तो हमेशा शिकार खेलने के लिए जाता, कौन है आपके साथ, मैं जाता हूँ तो मैं भी बच गया आप भी बच गए, लेकिन जब मैं जेल में था तब मुझे पता नहीं था कि मेरे लिए अच्छा कैसे है, लेकिन मुझे विश्वास था कि अच्छा है, और कुछ देर बाद समझ में आया कि अच्छा क्यों है। तो राजा बीरबल ने कहा, अकबर ने कहा कि हाँ जब मेरी उंगली कटी थी तो मुझे पता नहीं था कि अच्छा कैसे है, लेकिन कुछ समय बाद में पता चला कि ये मेरे लिए कैसा अच्छा है। तो हमारी परीक्षा कभी है, हमारी परीक्षा तब तक है जब कोई बुरी घटना होती है और उसके बाद में बहुत दिन के बाद में समझ में आता है कि बुरी घटना अच्छी क्यों है। तो भक्ति की परीक्षा एक ही होती है कि उसको उस पीरियड में श्रद्धा के साथ जीना है, दैट पीरियड टिल द टाइम यू डोंट नो हाउ इट इज गुड फॉर यू, टिल द टाइम योर फेथ विल हेल्प यू एंड विल कन्विंस यू कि नो आई डोंट नो बट आई अंडरस्टैंड दिस इज गुड फॉर मी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में बेटी है अभी वर्ष बहन हुई, जब उसका जन्म हुआ था तो उसका ब्रेन डैमेज हो गया। हाँ तो सबने ही बोला, हमने को हमको भी लगा, अरे प्रभु जी आप तो ऐसे हैं वैसे हैं, आपको ऐसा बच्चा क्यों होना चाहिए, भगवान ने आप तुम्हारे ऐसा क्यों किया वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हुई और कुछ कुछ हमको भी लग रहा था कि अरे ऐसे क्यों हुआ। लेकिन जब गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ स्वामी जब घर पे आए तो उन्होंने एक बहुत ही गोल्डन स्टेटमेंट बताया था, गोल्डन स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि ये कृष्ण का बहुत विशेष बालक है और वो बहुत विशेष बालक को विशेष सेवा की आवश्यकता है, तो कृष्ण भगवान को आप दोनों पर श्रद्धा है कि इस विशेष बालक की विशेष सेवा आप लोग कर सकते हो, इसलिए कृष्ण ने आपको ये बालक दिया है, इसका कुछ समय है जो इसको इस जिंदगी में काटना है और उसके लिए विशेष सेवा की आवश्यकता है उसको, और वो आप दे सकते हैं, ये विश्वास कृष्ण भगवान को आपके ऊपर है इसलिए कृष्ण भगवान ने आपको ये बच्चा दिया है। तो पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, जो पहले लग रहा था कि शाप है या हमारे लिए कुछ बुरी घटना है, लेकिन वो बुरी घटना दिव्य घटना में रूपांतर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि चेतना में अंतर करा दिया गुरु जी ने। गुरु जी transformed our consciousness to make us understand that what you think worst is not worst, is actually good. तो यही वृंदावन चेतना, आपने पूछा था ना वृंदावन चेतना घर में कैसे पालन करना चाहिए, ये इस विचारधारा की शुरुआत है। वृंदावन भावना की एक चेतना है, वृंदावन इज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, वृंदावन इज ऑल्सो अ प्लेस, वृंदावन एक जगह भी है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जाते हैं, उधर यात्रा करते हैं, कथा सुनते हैं, लेकिन उसके आगे जाकर वो केवल जगह नहीं है, क्योंकि जगह में आपको दिखेगा अगर ये तो गटर है, इधर कुंवर है, इधर तो चीटिंग रिक्शा वाले लोग हैं, इधर दुकानदार भी चीटिंग करते हैं, इधर सब बस वाले चीटिंग करते हैं, हर जगह पर बुरे अनुभव आते हैं, तो बंदर काटता है इधर, कभी बंदर छीन लेता है वस्तु सब, तो वो एक फिजिकल सिचुएशन है। और उधर भी जो आपको दिख रहा है ना वो रियल वृंदावन नहीं है, उधर भी जो आपको दिख रहा है वो एक्सटर्नल अपीयरेंस है कलयुग का, जो आपको डिस्करेज कर सकता है। हाँ, यू मे फील कि व्हाट इज दिस, व्हाई आई केम हियर, आई शुड नॉट कम हियर। जैसे मेरे भाई को एक बार वृंदावन गया था ना, मेरा बड़ा भाई अकेला गया था, मैंने कहा था कि आना है तो मेरे साथ में आ जाओ, मैं ले जाऊंगा, लेकिन फिर भी अकेला गया था, अकेला गया वृंदावन में, और उसको ना एक मंदिर में गया वो, आई डोंट नो व्हिच टेम्पल, तो वो मंदिर छोटा सा मंदिर था, एकदम ध्यान से सुनिए, छोटा सा मंदिर था, और वो जाते ही ना, वो मेरा भाई बड़ा गोरा गोरा है, बहुत सुंदर दिखने के लिए, उसको बहुत सारे लोग घेर लिया ऐसे पंडा लोगों ने, और ऐसा उसको पट्टी पढ़ाया कि इसको गाय को दे दो, उसको दे दो करके ना, उसका जेब में जितने पैसे थे सब दान करवा दिए उससे, और वो इतना ओवरवेल हो गया था, तो बोला मैं कभी वृंदावन नहीं आऊंगा, आज तक वृंदावन वापस नहीं गया हूँ। मैंने कई बार बोला मेरे साथ चलो भैया, मैं आपको घुमाता हूँ अच्छी तरह, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन वो इसका दिमाग में इतना फिट हो गया है कि आई डोंट वांट टू गो देयर। तो इसका मतलब क्या है, वो जो वृंदावन जगह है जिसमें हम जाते हैं और वहां पर जो देखते हैं वो भी सही वृंदावन नहीं है, वो माया के पर्दे से ढका हुआ वृंदावन है। और जब हम किसी गुरु के आश्रय में वहां जाते हैं, गुरु की आज्ञा में जाते हैं, सेवा में जाते हैं, तो माया का पर्दा वहां से निकाला जाता है, और फिर उस धाम का जो गौरव है वो हमारे सामने प्रकट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको दिखता है वो रियल वृंदावन नहीं है, जो हम सुनते हैं वो रियल वृंदावन है। तो रियल वृंदावन जो है वो आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, जब तक हमारी आंखें शुद्ध भक्त की आंखें नहीं होती हैं, तब तक रियल वृंदावन हम कानों से सुनते हैं और देखते भी कानों से ही हैं, श्रवण माध्यम से दर्शन करते हैं उसका, और श्रवण माध्यम से हमारी चेतना तैयार होती है उस वृंदावन को अप्रिशिएट करने के लिए, और फिर उसके बाद में जो रियल वृंदावन है वो हमें महसूस होने लगता है, वी स्टार्ट फीलिंग द डिविनिटी ऑफ द रियल वृंदावन। और उसके बाद में एक स्थिति ऐसी आती है कि हम इतने शुद्ध हो जाते हैं कि हमारी आंखों से भी वो दिव्य वृंदावन हमको दिखाई पड़ता है, उसको दिव्य वृंदावन कहते हैं। और उस दिव्य वृंदावन की भी बहुत सारी स्थितियां हैं, जैसे वृंदावन है, फिर निज वृंदावन है, फिर निवृत्त वृंदावन है, फिर निकुंज वृंदावन है, बहुत स्टेजेस है उसके, इनर एंड इनर एंड इनर एंड इनर कॉन्शियसनेस। तो निकुंज वृंदावन क्या है, जहां पर केवल राधा कृष्ण ही रहते हैं, भाई कुछ आता नहीं वहां पर, प्राइवेट पास टाइम्स। निवृत्त वृंदावन क्या है, अष्ट सखियां और ओनली राधा कृष्ण। और निज वृंदावन क्या है, सखा सखी सब लोग रहते हैं। और जो वृंदावन कहते हैं उसमें क्या है, उसमें गाय भी है, उसमें मोर भी है, तोता भी है, भैंसे भी है, माता भी है, गोपियां भी है, सब लोग है उसके अंदर। जैसे वो वृंदाकुंड नाम की जगह है, वृंदाकुंड नंदगांव में, उधर एक वृंदाकुंड है, एक गुप्त कुंड है, एक ही जगह पर है। तो उसमें अंतर क्या है कि जब वृंदाकुंड है वहां पर जब वृंदा देवी लीला अरेंज करती है तो सब गोपियां सब मिलकर वहां पर लीला करते हैं, और कभी कभी कृष्ण को ऐसी इच्छा होती है कि कोई नहीं चाहिए, ओनली राधा रानी नहीं, तो वो गुप्त कुंड में लीला अरेंज करती है उनकी, वो सब कुछ तैयारी करते सब लोग और उनको छोड़ देते हैं वहां पर, नोबडी गोज देयर एंड दे ओनली परफॉर्म पास टाइम्स। तो वृंदावन जो सारा वृंदावन है वो केवल चेतना पर आधारित है, आपकी चेतना कैसी है, आपकी श्रद्धा कैसी है, श्रद्धा है कि निष्ठा है, क्या आपका हृदय स्वच्छ है कि नहीं है, अनर्थों की निवृत्ति हुई है कि नहीं है, आर यू फ्रीड फ्रॉम अनर्थ और नॉट, डू यू हैव अट्रैक्शन फॉर वृंदावन और नॉट, डू यू रेगुलरली हियर फ्रॉम रियलाइज सोल और नॉट, ये सबके ऊपर आपका वृंदावन की अनुभूति डिपेंड रहती है। तो सबसे पहला अगर घर में आपको वृंदावन चेतना निर्माण करनी है तो सबसे पहली बात यह है, वहां जाने के पहले भी वो है श्रवण, तो आपको सुनना है पहले कि एक वृंदावन क्या चीज है। इज इट अ ज्योग्राफिकल लोकेशन इन मथुरा समवेयर फ्रॉम स्टेशन 11 किलोमीटर 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर और इज इट समथिंग डिवाइन। दैट इज फर्स्ट थिंग, विथ श्रद्धा यू लिसन, यू श्रवण करो वृंदावन के बारे में, फिर आपको धीरे धीरे लगेगा कि वृंदावन क्या चीज है। और हमारा जो अगर आप पूछेंगे हमारा अनुभव क्या है, बिना भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा के बिना आपको वृंदावन की अनुभूति नहीं हो सकती है, इम्पॉसिबल है। आप वहां पर 110 बार भी गए होंगे और सब जगह आपने छान मारा होगा लेकिन फिर भी आपको वृंदावन क्या है ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि वृंदावन का जो रहस्य है वो केवल उसकी चाबी संतों के पास है। और जब संत आपके लिए कृपा करके वो चाबी खोल देते हैं तभी आपको वृंदावन का दर्शन होता है और वृंदावन की दिव्य चेतना का अनुभव होता है, नहीं तो वृंदावन तो ऐसा ही ज्योग्राफिकल लोकेशन बन के रहेगा, इट विल नेवर बी रिवील्ड टू यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक टिपिकल एग्जाम्पल देता हूँ आपको, समझो आपका कपड़े का बिजनेस है और आप वृंदावन लोई बाजार में अपना कपड़ा बेचने को जाते हो और थोड़ा कपड़ा बरसाने की दुकान में बेचते हो, थोड़ा कपड़ा नंदगांव में बेचते हो, थोड़ा कपड़ा गोवर्धन की दुकान में बेचते हो मार्केट में, थोड़ा ज्यादा कपड़ा वृंदावन में बेचते हो और आप 50 साल से वृंदावन जा रहे हैं तो क्या होगा, आपको कुछ समझेगा नहीं, आपको खाली इतना ही मालूम है कि वृंदावन में कौन से अच्छे बिजनेसमैन है, यहाँ कपड़ा ज्यादा खरीदते हैं और बरसाने में कौन सा बेस्ट बिजनेसमैन है और नंदगांव में कौन सा बेस्ट बिजनेस है। बाकी वृंदावन का गौरव क्या है, चेतना क्या है, कुछ समझ नहीं आएगा आपको, क्योंकि आपका पर्पस जो है वो पैसा है और उसके लिए आप वहां जा रहे हो। तो वृंदावन का जो सही गौरव है वो केवल संतों के आशीर्वाद से ही आपके लिए प्रकट होगा, नंबर वन। तो हमारे जीवन में भी ऐसा कोई संत होना चाहिए जो हमारा हमारे गुरु बनेंगे या जैसे भी हो, एक संत का संपर्क हमारी जिंदगी में होना चाहिए, नंबर वन। और नंबर टू, उस संत की सेवा में हमको लगना चाहिए ताकि वो सेवा के माध्यम से वो साक्षात्कार हमें वो दे सकते हैं। विदाउट हैविंग अ कनेक्शन विद अ सेंटली पर्सनालिटी एंड विदाउट सर्विंग हिम एंड विदाउट प्लीजिंग हिम देर इज नो क्वेश्चन ऑफ डेवलपिंग वृंदावन कॉन्शियसनेस। अभी और एक बात बताता हूं आपको कि वृंदावन भी चार स्तर पे हम समझ सकते हैं। एक स्तर है कि हमको यहाँ से ट्रेन पकड़ के मथुरा जाना है, वहां से 11 किलोमीटर वृंदावन है, वहां पर एक इस्कॉन का मंदिर है, वहां पर एक आश्रम में रूम बुक किया है, वहां जाना है, तो फिर आप नंदगांव जा रहे हैं, फिर बरसाना जा रहे हैं, फिर गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे, फिर सात मंदिर देखेंगे, ओके। तो एक है कि आप वहीं रहते हो, आपका जन्म ही वहां हो गया। दूसरा है कि आपका जन्म वहां नहीं हो गया है लेकिन बाद में आप वहां पर शिफ्ट हो गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के अर्निंग करके सेविंग करके आप वहां पर सेटल हो गए, एक कमरा लेके चैतन्य विहार में आप रह गए उधर, तो आप दो नंबर के विजवासी हो गए। फर्स्ट नंबर का वो जिसका जन्म वहां पर हुआ है। तीसरा नंबर कौन है, वो हमारे जैसे हैं, वो साल में एक बार वहां पर जाते हैं, 15 दिन की यात्रा करके आते हैं कुछ समय के लिए, वो भी ब्रिजवासी है क्योंकि वो ब्रिजवास कर रहे हैं 15 दिन के लिए। और चौथे ब्रिजवासी हमारे प्रभुपाद जैसे हैं, वो न केवल वृंदावन में रहे कुछ समय के लिए लेकिन वो वृंदावन को हृदय में ग्रहण करके, हृदय में विराजमान करके, प्रतिष्ठापित करके वो वृंदावन लेके परदेश गए और वो सबको बांटा वृंदावन उन्होंने सूक्ष्म स्तर पर, हाँ ऐसे हृदय से बांटा सब लोगों को, इतना बांटा कि लोग उसको सुनकर ही अट्रैक्ट हो गए और आ गए इधर वृंदावन में। और उसमें से कुछ लोग यही बस गए, फॉरेनर होते भी सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, स्विट्जरलैंड जर्मनी इंग्लैंड सब छोड़ दिया और इधर आके एकदम सिंपल साइकिल पे घूम रहे हैं और यहाँ पर रह रहे हैं। तो वो सच्चा ब्रजवासी है, उसके मन में जो चेतना है ना वृंदावन की वो सही चेतना है। वो जहां पर भी रहेगा उसके मन में वृंदावन रहेगा और जहां पर भी रहेगा उसको लोग उसको मिलेंगे तो वृंदावन को याद करेंगे, वृंदावन को फील करेंगे, अनुभव करेंगे वृंदावन का उस व्यक्ति के संग में, जैसे प्रभुपाद जी के संग में सभी वेस्टर्न लोगों ने वो अनुभव किया कि ये इनके अंदर जो प्रेम है ना वो कुछ विशेष है। फिर प्रभुपाद ने उनको समझाया कि ये वृंदावन का राधा कृष्ण का प्रेम है, तो उन्होंने भी कहा कि हमको भी आना है, तभी लेके जाएंगे आप। तो फिर एक दिन प्रभुपाद उनको सबको वृंदावन लेके आए, मंदिर बनाया, उनको रहने की व्यवस्था किया, कथा बताई, दर्शन दिलाया, उनको सबको समझाया। तो जो उनके हृदय के स्तर पर प्रकट हुआ था फिर वो फिजिकली भी उन्होंने प्रकट करके दिखाया उनको, और इतना उनको अट्रैक्ट कराया कि उनको लगा कि बस हो गया अपना विदेशी का जीवन, अभी मतलब उनके देश का जीवन छोड़ दिया उसको, उसने सेविंग वेविंग किया और भाग के इंडिया में आ गए। और हमारे हम अभी बम्बई में रह गए, वो लोग ऑलरेडी वृंदावन में सेटल हो गए, साइकिल पे घूमते, मार्केट जाते, सब्जी खाते, साल में एक साल एक महीना गांव जाते अपने अपने देश में, और वहां जाके थोड़ा बिजनेस करते हैं और साल भर के लिए पैसा लेकर बहुत सिंपल में यहाँ पर रहते हैं, अपने एक महीना की तनख्वाह पे यहाँ का एक साल निकालते हैं, मतलब कितना सिंपल रहते होंगे। तो मैंने आपको एक और एक बात बताई कि कैसे समझना है वृंदावन को। जब तक आपकी चेतना में वृंदावन नहीं आएगा तब तक 50 बार भी आप जहां जाएंगे कुछ लाभ नहीं है उसका। अल्टीमेटली वृंदावन इज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस विच यू हैव टू अडॉप्ट। अभी हम समझने का प्रयास करेंगे कि वो कैसे, क्या है, क्या वो कॉन्शियसनेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कॉन्शियसनेस। तो वृंदावन का जो सबसे पहला पहलू है कॉन्शियसनेस का वो है प्रेम। प्रेम ये सबसे प्रधान भावना है वृंदावन की, क्योंकि वृंदावन में क्या होता है, केवल प्रेम ही प्रेम का प्राकट्य है। सब लोग प्रेम कर, नंद बाबा प्रेम कर रहे हैं कृष्ण के ऊपर, यशोदा मैया कर रही हैं, गोपी कर रहे हैं, ग्वाल बाल कर रहे हैं, मोर कर रहे हैं, तोता कर रहे हैं, गाय कर रहे हैं, भैंस कर रही है, हाँ हनी बीज कर रहे हैं, सभी लोग कृष्ण पर प्रेम कर रहे हैं। तो वृंदावन कॉन्शियसनेस का पहला पहलू क्या है, कृष्णा इन द सेंटर, सबके बीच में सबकी चेतना जो है, सबका जो आकर्षण है, सबका मन जो है वो उन पर टिका हुआ है। सब कुछ लोग सांस भी ले रहे हैं उनके लिए रहे, जी रहे हैं उनके लिए जी रहे हैं, उनके लिए ही जी रहे हैं, उनके लिए सेवा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सब उनके लिए है। तो अगर हमको वृंदावन कॉन्शियसनेस घर पे लाना है तो सबसे पहले समझना चाहिए कि क्या कृष्ण आपके जीवन प्राण है, क्या आपके कृष्ण जीवन आपके केंद्र स्थान में है, क्या सब कुछ जो कुछ कर रहे हो कृष्ण के लिए कर रहे हो, आपका नाम आपके घर पे लिखा हुआ है कि यू आर द ओनर ऑफ द हाउस, पर आपको दिल में लगता है कि ये कृष्ण का घर है, क्या कहते हैं उसको, तुम्ही सर्वेश्वर, अमित तो कुकुर, हाँ क्या वो भजन क्या है कि पोड़ेची तुम्हारा घर है, तुम्ही तो ठाकुर तुम्हारा कुकुर, पोड़ेची तुम्हारा घर है, नाम तुम्हारा खुद का लगा है, बाहर पेपर तुम्हारे नाम पे बने हैं, कोर्ट के पेपर तुम्हारे हैं एग्रीमेंट के नाम पर, लेकिन वो क्या कह रहा है, तुम्ही तो ठाकुर तुम्हारा कुकुर, जानी हो बोली हो मोरे सर्वस्व तुम्हार चरणे संपिया, पोड़ेची तुम्हार घरे, हमारा घरे नहीं, पोड़ेची तुम्हार घरे, जो घर मेरे नाम पे है वो क्या कह रहे हैं, पोड़ेची तोमार घरे। कितनी चेतना, कितनी श्रेष्ठ चेतना है, अरे मैंने पसीना बहाया है 20 साल से, इतना लोन पेमेंट करने के लिए इतना कर्जा लिया था मैंने, इतना पसीना बहाया, दिन रात ओवर टाइम किया है, तब जाके ये घर मेरे नाम पे हुआ है, और अभी वो कह रहा है पोड़ेची तोमार घरे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव क्रेडिट टू समबडी एल्स कि भाई मैंने मेहनत किया घर तुम्हारा है, ऐसा बोलना मुश्किल है। वो भी क्या बोल रहे हैं, तुम्ही तो ठाकुर और आई एम योर फैमिली मेंबर, ऐसा नहीं बोल रहे हो, तुम्ही तो ठाकुर तुम्हारा कुकुर, कुकुर का मतलब क्या है, कुत्ता, तुम्हारा कुकुर, अपना कुत्ता बना के रखे मुझे आपके घर पे। तो आगे क्या बोलते हैं कि आगे बोलते हैं कि जब तुम बुलाओगे ना तब दुम हिलाते मैं आ जाऊंगा, मैं तो घर के बाहर खड़ा रहूंगा, जब भी तुम बुलाओगे दुम हिलाते आ जाऊंगा, और जो तुम टुकड़ा फेंकोगे ना वही खाऊंगा। बहुत डिफिकल्ट है ये सोचने के लिए, अरे तुम ही कमा रहे हो, तुम्हारी बीवी बना रही है और सब कुछ घी तुम्हारा लगा हुआ है उसके अंदर, और वो बोल रहे हैं कि तुम खाओ और तुम टुकड़ा फेंकोगे तो मैं खाऊंगा उसको। वेरी इंपॉर्टेंट। तो घर के स्वामी अगर आप कृष्ण को मानते हैं तो आपकी शुरुआत हो गई कि आप वृंदावन कॉन्शियसनेस में आ गए। अभी आ गई, अभी ये मेरी बीवी है, हाँ मैं इसका पति हूँ और मैं सोचता हूँ कि आई एम द हस्बैंड, शी इज माई सर्वेंट, शी इज द सोर्स ऑफ माई एंजॉयमेंट। जब भी दिल होगा तो मुझे वो आनंद देगी, सुख देगी, हर प्रकार का, खाने पीने का, सब प्रकार का। जब चाहे तभी मेकअप करेगी और मुझे खुश करेगी, और वो सोचेगी कि जब चाहे तब पैसा दूंगा, तो चाहे वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन दूंगा, साड़ी दूंगा, बैंगल दूंगा, तो चाहे वो ये चाहिए वो चाहिए, याद ये खरीदना है वो खरीदना है, सब देगा। इसका मतलब क्या, वो सोच रही है कि ये पति मेरा सोर्स ऑफ सेल्फ सेटिस्फेक्शन, ये है मेरा सभी सुखों को देने वाला ये आदमी है, बटन दबाओ आ जाएगा। और मैं सोचूंगा कि मेरे को सब सुख देने वाली ये है, बटन दबाऊंगा तो आ जाएगा सुख मेरे लिए। तो ये वृंदावन विपरीत चेतना है कंप्लीटली। तो वृंदावन चेतना क्या है कि मैं सोचूंगा कि इस स्त्री को भगवान ने मुझे दिया है देखभाल करने के लिए और जीवन के अंत में भगवत धाम में पहुंचाने के लिए। इसमें थोड़ी सुख की व्यवस्था है, ऐसा नहीं कि सुख की व्यवस्था नहीं है, अच्छा खाना पीना मिलेगा और भी सुख मिलेगा, लेकिन बेसिकली वो केवल वो सुख देने के लिए वो मेरे पास नहीं आई है, भगवान ने विवाह संस्कार के माध्यम से मुझे उसको दिया है ताकि मैं उसको आध्यात्मिक जीवन में हेल्प करूं, उसकी देखभाल करूं, उसको मेंटेन करूं और ऐसा तैयार करूं कि जीवन के अंत में वो भगवत धाम जाएगी। और वो क्या सोचती है कि ये मेरे पति हैं, ये मेरे गुरु जैसे हैं, पति गुरु, ये मेरे गुरु के प्रतिनिधि हैं, रोज मेरे घर पे रहते हैं, गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं और मैं इनकी सेवा करूंगी और ये भक्त हैं और मैं इनकी सेवा करूंगी तो इनके गाइडेंस में मैं भगवत धाम पहुंच सकती हूँ। तो गुरु महाराज क्या बताते हैं शादी के लेक्चर में, शी इज नॉट मेंट फॉर योर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, यू आर सपोज टू हेल्प हर टू गो बैक टू गॉड हेड। और उसको बोलते हैं हस्बैंड इज नॉट मेंट फॉर योर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, यू आर सपोज टू सर्व हिम एंड फॉलो हिम एंड ही विल टेक यू बैक टू गॉड हेड। ये नंबर टू चेतना हो गई। हाँ, सब लोग जो पति पत्नी बैठे यहाँ पर विचार कर लो कि कितना परसेंट मैं सोचता हूँ कि ये स्त्री मेरे भोग के लिए है और कितना परसेंट सोचता हूँ कि मैं इसका सेवक हूँ और उसे भगवत धाम पहुंचाने का मेरा ड्यूटी है। उतना परसेंट आप वृंदावन कॉन्शियसनेस में हो और जितना नहीं है उतना नहीं हो। तो पहला हो गया घर, बाद में पति पत्नी, उसके बाद में बच्चे। हाँ, जिनके जिनके बच्चे हैं वो सोच लो कि ये मेरा बच्चा है, ये मुझे देखेगा, मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो ये मेरा दिल का तारा है, कुल का दीपक है, हाँ ये संभालेगा मुझे। इस भाव से करेंगे ना तो निश्चित रूप से आपको धक्का लगेगा आगे जाकर, निश्चित रूप से। इफ यू थिंक दैट राइट नाउ आई एम इन्वेस्टिंग इन हिम सो दैट आई विल गेट द इंटरेस्ट आफ्टरवर्ड्स, ये सब भूल भुलैया है। आप लोगों को, हम लोगों को सब पता होना चाहिए गृहस्थों को कि वृंदावन कॉन्शियसनेस मतलब क्या, कि ये बच्चे जो हैं ये कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, कृष्ण के सेवक मेरे घर पे आए हैं, उन सबको अच्छी परवरिश देना, इंस्पायर करना और भगवत धाम के रास्ते पे रखना और भगवत धाम के योग्य बनाना, गुरु के चरणों में सुपुर्द करना, दीक्षा दिलाना, अच्छे संस्कार देना, ये मेरी सेवा है। और इन लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाकर उनकी सेवा करके उनको एक बार भगवत धाम पहुंचाने के योग्य बनाना, ये मेरा, मेरी सेवा है, हमारे दोनों की सेवा है। दिस इज अनदर थर्ड पार्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, वृंदावन कॉन्शियसनेस। और जो भी करेंगे, घर में फ्रिज आया तो बोले आइसक्रीम खाएंगे, नो, जो भी वस्तु घर पे आती है वो केवल कृष्ण की सेवा के लिए एक और साधन जुड़ गया, इस भाव से आपको देखना है। टीवी आ गया तो आप बोलेंगे वाह अभी मैं कार्टून देखूंगा, फिल्म देखूंगा, न्यूज देखूंगा, ये कराटे देखूंगा, ये फिल्म देखूंगा, सब देखूंगा। लेकिन हम क्या बोलेंगे, नहीं, अभी हम उस पर यूट्यूब पर महाराज के लेक्चर सुनेंगे, यूट्यूब पर कीर्तन देखेंगे, यूट्यूब पर वृंदावन यात्रा देखेंगे, मेमोरीज ऑफ वृंदावन देखेंगे और किसी स्वामी जी का भागवत सुनेंगे, मंदिर से जो आता है लाइव रिकॉर्डिंग उसको देखेंगे, इसको सुनेंगे। यात्रा का अगर जा नहीं पाया तो उस टीवी पर मैं देखूंगा यूट्यूब में कि महाराज जी क्या बोल रहे हैं वृंदावन में, अभी तो विधायक का उपयोग हो गया उसका। तो वृंदावन आपके घर में अभी प्रवेश कर सकता है अगर आपकी चेतना उसके अनुकूल है तो। और वो चेतना क्या है? गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दास अनुदास, ये चेतना आपके घर में वृंदावन को अभी लाएगी। इस वक्त आपके घर में वृंदावन प्रवेश करेगा। अगर आप समझते हो अपने आप को कि मैं तो जो गोपियों के नाथ है, गोपी भरतुर जो कृष्ण है, गोपीनाथ उनके दासों का मैं दास हूं, तो आपने घर में अभी वृंदावन प्रवेश करेगा। चौथी बात, जो भी घर में आएंगे अतिथि बनकर उनकी आप सेवा करेंगे। दिस इज फोर्थ लेवल टू अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं बोलेंगे अरे क्या अभी अभी दो दिन आएगा रहेगा इधर, दो दिन खाना खाएगा, कितना खर्चा करेगा, ऊपर छुट्टी लेनी पड़ेगी उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, स्पेशल कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, कितना एक्सपेंस होगा, एसी लगाएगा, गर्म पानी स्नान करेगा, क्या हेडेक है, कब जाएगा। ये नारकीय चेतना है, हेलिश मेंटेलिटी। और वृंदावन चेतना क्या है? वृंदावन चेतना है कि ये जो आया हुआ आदमी है ना, ये मेरा परम सौभाग्य है कि ये घर पे आया है। अतिथि देवो भव, यानी जो बिना बोले, बिना आपको इन्फॉर्म किए घर पे आता है, वो साक्षात विष्णु का स्वरूप होता है। और आजकल का जमाना कैसे है, क्या प्रभु जी आपने बताया भी नहीं, मैं तो अभी मार्केट जाना है, मुझे ऑफिस जाना है, अभी तो आप भी आ गए बिना बताए, कम से कम फोन तो करते। ऐसा अच्छा नहीं है, अभी आज के जमाने में ऐसे बिना बताए आते, आप सबको बिजी रहते हैं। ये आजकल की चेतना है, मटेरियल कॉन्शियसनेस। और वो आध्यात्मिक चेतना क्या है? अरे प्रभु जी आ गए, क्या भागे हमारे आज, चलो मैं अभी फोन करता हूँ, छुट्टी लेता हूँ, आप आज आ गए, आज हमारे घर में भगवान आ गए। सो अगर आप किसी मेहमान को जो बिन बुलाए और बिन बताए आया है, उसको अगर आप इस चेतना से स्वागत करते हो, तो आपका घर वृंदावन है। प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि वृंदावन में कभी जब भी वो दरगाह में आए तब फोन नहीं किया था उन्होंने कि मैं आ रहा हूँ, उसने मुझे भेजा है, या जब उद्धव जी वृंदावन पहुंच गए थे तभी फोन नहीं किया था कि भाई आ रहा हूँ मैं उधर आपको मिला, आप घर पे हो ना, अभी घर पे रहो, मैं आ रहा हूँ। हाँ, बलराम जी जब आए थे संदेश लेकर कृष्ण का द्वारका से वृंदावन में, तो वो फोन नहीं किया था उन्होंने कि मैं आ रहा हूँ। ऐसे सब लोग हमारे घर पे अभी भी मुझे याद है, बचपन में हम लोग 10 जन थे, एक 10x12 की खोली थी हमारी, ओनली 10x12 feet का एक रूम था, उसके अंदर बाथरूम था, उसके अंदर बेड था, उसके अंदर किचन भी था, और हम लोग को घर में सोने को जगह नहीं थी, हम लोग बाहर सोते थे, टेरेस पे बरामदे में सोते थे, वो जमाने की बात कर रहा हूँ। तभी भी हमारे घर पे कितनी बार मुझे याद है, अचानक दोपहर में कोई आता था मेहमान, तो मेरी माता पिता के भाल प्रदेश पर कभी आंख ही नहीं आई, अरे अरबी की क्यों आया, ऑलरेडी इतने खर्चे हो रहे, ऊपर से और एक आदमी, नहीं तुरंत आ जाओ, बैठो बैठो, और तुरंत लंच कराते थे उसको, और कभी बोलते थे रह जाओ उसी घर में, जहाँ रहने को जगह नहीं है, हम लोग बाहर सोते थे, रह जाओ, तो उनको अंदर, और एक आदमी जो घर सो रहा था उसको भी बाहर सोने के लिए, लेकिन उसको बोलेंगे रह जाओ, आराम से रह जाओ। गांव से भी लोग आते थे रहने के लिए। तो वृंदावन का मतलब क्या है? घर बड़ा नहीं होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए, तो सब जगह हो जाती है। दिल नहीं बड़ा होगा तो घर महल बंगला होगा आपका, फायदा क्या है? कुत्ता ही भोगेगा वो गेट पर, अंदर मत आओ करके कुत्ता ही भोग देगा, उधर वो अंदर ही नहीं आएगा, कमरे खाली पड़े हैं, लेकिन वो बोलेगा नहीं आना है इसको अंदर। तो व्हाट इज वृंदावन कॉन्शियसनेस? कि दिल बहुत विशाल होना चाहिए, प्रेमी होना चाहिए, जेब में कितने पैसे उसके ऊपर आपकी सेवा निर्भर है। क्या बन रहा है घर पे? दाल चावल बना हुआ है, उसल बनी हुई है, चलो बैठो आओ खाओ, जो भी बना हुआ है प्रेम से खिलाओ, चलो कुछ नहीं है केला है, केला खिलाओ। जैसे भगवान आए थे अतिथि बनकर और विदुर की पत्नी ने उसको क्या किया था, केले का छिलका खिलाया था, बोलो, भगवान ने प्रेम से खाया था। अरे वो हस्तिनापुर नहीं था, वो तो वृंदावन था, क्योंकि वृंदावन की प्रेम का अनुभव भगवान ने वहां पर किया विदुरानी के घर पे, तो विदुरानी का घर जो है वृंदावन है, उसको मथुरा जाने की जरूरत नहीं है, मथुरा के अंदर प्रवेश करने की जरूरत नहीं, वृंदावन क्या है देखने के लिए, वो तो वृंदावन का भाव उन्होंने विदुर वाणी के घर पे अनुभव किया उसका, केले का केला भी खाके नहीं छिलका खाके, बोलो आप सोचो। तो तात्पर्य क्या है? अतिथि सेवा ये वृंदावन भाव में बहुत आवश्यक है। घर में जो भी आता है, जवान आता है, गुंडा आता है, अनवांटेड आता है, वांटेड आता है, कीमती वस्तु व्यक्ति आती है या बहुत घटिया व्यक्ति आती है, लेकिन वो आपके घर पे आई तो दुश्मन को भी आपको प्रेम से व्यवहार करना है. दिस इज वृंदावन. इवन इफ एनिमी कम्स एट योर हाउस, यू कैन इंसल्ट हिम, यू कैन नॉट चेस हिम अवे, बट यू हैव टू ट्रीट हिम विद लव, क्योंकि वो आपका कल्चर है. वो दुश्मन का कल्चर नहीं होगा जो घर पे आया हुआ है. इट इज योर कल्चर दैट ही हैज कम टू योर हाउस एंड यू हैव टू ट्रीट हिम लाइक दैट वे. घर पे आने पर कई घर पे कभी कभी आके लोग झगड़ा करते हैं, समझो भाई लोग आ गए परिवार के सब लोग और घर में आके कुछ बात छेड़ देते हैं और झगड़ा होता है. लेकिन अगर वो आपके घर पे आए हैं तो आपको उनको उल्टा उत्तर नहीं देना है, आपको उनको हर्ट नहीं करना है, क्योंकि वो आपके घर पे आए हैं और आपके घर पे मेहमान है. अभी वो आप होस्ट हो. जब कहीं बाहर होटल में मिलोगे आप कहीं, तो आप अपना जवाब दे सकते हो उनको जो देना है आपको दिल में से. लेकिन अगर वही बात आपके घर पे हो रही है तो एज अ वैष्णव, एज अ वृंदावन कॉन्शियस पर्सन, यू विल नॉट इंसल्ट देम बिकॉज नाउ दे आर योर होम गेस्ट और आप उनके होस्ट हो, आप उनके यजमान हो. तो अतिथियों के विषय में विशिष्ट व्यवहार करना ये वृंदावन कॉन्शियसनेस के लिए बहुत जरूरी है. उसके आगे जब कभी किसी को कुछ देने का विचार आता है तो वृंदावन कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति उसे कंजूसी नहीं करेगा, वो डिस्कस करेगा, लेकिन वो दिल में तड़पेगा नहीं, ये क्यों दिया, वो क्यों दिया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया. डिस्कस करना अभी कलयुग में जरूरी, क्योंकि सब लोग इतने घर ही नहीं है कि करोड़ों का रुपया घर में पड़ा है और जो चाहे दे दो, ऐसा नहीं है. तो डिस्कस करना जरूरी है, लेकिन जब देते हैं तो वृंदावन कॉन्शियस पर्सन दिल से देगा, भले वो 5 रुपए की वस्तु हो, लेकिन वो प्रेम से देगा. कैसे विद्वासी होते, देखो हम लोग अभी ना डॉक्टर हैं और बहुत सारे पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम लोग वृंदावन में यात्रा जाकर भिक्षा मांगते हैं जानबूझकर, एज अ ट्रेनिंग ऑफ ह्यूमिलिटी. हम लोग जाके कई बार, अभी नहीं 25-35 साल से वहां पर जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं. और विद्वासी इतने गरीब होते हैं ना, एकदम गरीब होते हैं, और आप बोलेंगे भैया भूख लग रही है कुछ रोटी खिला दोगी, हाँ बेटा बैठा 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 अभी बना देते हैं, और आपके सामने तुरंत आटा गूंथेगी और बातें करते करते आपको उलझाएगी, उसमें भी रोटी तैयार हो जाएगी उसकी, और तुरंत कोई अचार निकालेगी और बोलेगी मिर्ची का ले लो, एक आम का ले लो, एक नींबू का ले लो खा लो, और एक थोड़ा मक्खन डाल देगी उधर से ऊपर, बेटा खा लो खा लो खा लो, और बन रही गरम गरम, और खा लो और खा लो. ये हमने हजारों बार अनुभव किया है. तो उनकी वेल्थ क्या है बताओ, उनकी वेल्थ पैसा नहीं है, उनकी वेल्थ उनका प्रेम है, जिस प्रेम से वो अनजान व्यक्ति को खिला रहे हैं. मैं अभी कितनी बताऊं आपको, मैं एक बार सूर्य कुंड में था, महाराज की यात्रा थी और यात्रा का कोऑर्डिनेटर में मैं था, और उसमें 2000 लोग थे और महाराज की कथा चल रही थी, तो मुझे पता था कि कथा चलेगी अभी 1 घंटा भर. तो मेरा हमेशा एक ऐसा इच्छा रहती है, मैं वो लगाता हूँ स्पीकर कान में और घूमता रहता हूँ, देखता हूँ कौन से घर पे जा सकता हूँ. तो एक घर में चढ़ा मैं, तो घर पे छत पे चला गया मैं, तो छत पे जाकर वो देखा तो एक मैया वहां पर रोटी बना रही थी, और नीचे ग्राउंड लेवल पे महाराज की कथा कर रहे थे. तो मैं वहां पर बैठ गया चूल्हे के सामने, बोला भैया क्या कर रही हो, तो बोली कि मैं रोटी बना रही हूँ, बैठो रोटी खा लो गरम गरम बन रही. बैठ गया मैं, एक रोटी, अच्छी आलू की गोभी की सब्जी, अचार, मक्खन एक खाया, बेटा और खा लो, दूसरे खा लिया, 4 मोटी मोटी रोटी खाई मैंने, पूरा लंच पैक करके मैंने अच्छी तरह दिल से खाया, तब तक कथा समाप्त हो गई. प्रेम से मैंने खाया, उसको कुछ देने का कोशिश किया, अरे क्या बेटा आप दे रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है, अरे प्रेम से आए हो, हमारे देश में आए हो, हमारे सूर्य कुंड पे आए हो, कौन आता है यहाँ पर, आप आए हो, बहुत धन्यवाद है आपका. अच्छा वो सब किया, बहुत चरण छुआ मैंने वो माता जी का, बहुत प्रेम से खाना खिलाया, फिर नीचे आया, फिर उधर क्या हुआ, सारे लोग है ना सूर्य कुंड के ऐसे रोड पे खड़े हैं, बड़े बड़े मटके लगाकर फ्री में छाछ बांट रहे हैं, और उनके बीच में कॉम्पिटिशन है, हमारे पास आओ हमारे पास आओ, उधर भी कॉम्पिटिशन है उधर भी कॉम्पिटिशन है. तो पूरे गांव के रस्ते में ना 4-5 जगह बड़े मटके लगाए थे, और भर भर के लोग 1 ग्लास 2 ग्लास 3 ग्लास छाछ पी रहे थे. देखो क्या है उनके पास, कुछ नहीं है. अभी जाओ मुंबई में आप किसी को छाछ मांगो, दरवाजा आपके मुंह बंद कर दे, मुंह पे आपके चोर आया है घर पे छाछ मांगने के लिए. हाँ तो दिस इज वृंदावन. और एक कहानी बताता हूं आपको वृंदावन की. देखो वो हमारी डॉक्टरनी है, हाई सर्जन, वो एक दिन बरसाना से गुजर रही थी, तो उसकी पहचान की एक विधवासी माता आई, और वो ना अपनी बेटी को ना टिफिन लेकर स्कूल जा रही थी, लेके जा रही थी उसको, मतलब बच्चे को छोड़ रही थी टिफिन के साथ, उतने में यहाँ डॉक्टर ने उसको मिली, तो अरे डॉक्टर ने साहब, अरे कितने दिनों बाद मिली हो, अरे क्या अभी दिखा इधर उधर, क्या कुछ आपको देने के लिए, अच्छा ये काम करो, ये रोटी सुनती है ना वो ले लो आप, टिफिन दे रही है अपने बेटे का टिफिन। हाँ तो डॉक्टर ने बोली, मैया अरे तुम्हारी बेटी के लिए ना वो, मैं तो आ जाऊंगी घर पे आपके खा लूंगी, अरे तुम कब आओगी, इतने दिनों बाद आई हो, कब आओगी पता नहीं, ये ले लो ना बच्चे के लिए, मैं दोबारा स्कूल जाके दे दूंगी। और जबरदस्ती उसके हाथ में रोटी सब्जी का डब्बा पकड़ाया, बच्चे को स्कूल भेज दिया, उसके बाद में घर गई, दोबारा रोटी बनाया और दोबारा स्कूल में छोड़ के आई। मैं बोला ये केवल एक ब्रिजवासी औरत ही कर सकती है, कोई नहीं कर सकता ऐसा। बच्चे का भी डब्बा रोटी निकाल कर वो आपको दे रही है, क्योंकि वो क्या सोच रही है कि तो मुंबई के लोग हैं, पता नहीं कब आएंगे, कब रोटी खाएंगे, यहाँ की ब्रिजवासी की रोटी कब खाएंगे, कब भाग्य मिलेगा, बेटा तो रोज ही खाता है, मैं दोबारा बना दूंगी, लेकिन ये तो कभी एक बार आते हैं, इनको मिलना चाहिए, ठाकुर जी की कृपा होनी चाहिए। तो वृंदावन कॉन्शियसनेस क्या है, तुम्हारे पास अगर कुछ है देने लायक, वो दूसरों को देने के लिए तत्पर रहते हो, खुद भूखे रहेंगे। वो थे ना घनश्याम बाबा, वो कैसे थे, शक्कर इतना ही खाना है, लेकिन क्या बोल रहे हैं, अरे यू आर गोपीचंद वल्लभ फ्रेंड, यू आर गोपीचंद वल्लभ फ्रेंड, यू आर हिज गेस्ट, आई एम हिज सर्वेंट, नो नीड। अरे कुछ नहीं उसके पास, एक ही कंबल है, बोलते नो नीड, यू नीड इट, यू आर गोपीचंद वल्लभ फ्रेंड, यू आर गोपीचंद वल्लभ गेस्ट, अपना भी जो भी है वो भी दे रहे हैं। तो आपके पास कितना पैसा है घर में, कितना वैभव है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके पास कितनी दानी प्रवृत्ति है, आपको कितने देने की प्रवृत्ति, कितने दानशील है आप, दैट इज वृंदावन कॉन्शियसनेस। और उन लोगों की श्रद्धा रहती है, एक बात ब्रजवासी जो होते हैं ना, उनकी श्रद्धा रहती है कि देने से कभी भी कुछ कमी नहीं होती है। मुंबई के लोग है ना, जैसे समझो आपको भी घर पे आया और आपने उसको एक गोभी दे दिया, गोभी दे दिया, गोभी, तो आपके मन में कैसा विचार है, 50 रुपए का गोभी दिया, 20 रुपए का लौकी दिया, है ना, 5 रुपए का टमाटर दिया, ऐसे उसके मन में विचार चढ़ित करता रहेगा, वो जब देगा तभी। आप बोलने को आए हो कि टमाटर है क्या, तो टमाटर की जरूरत है, तो टमाटर देगी निकाल के वो, लेकिन बंदे क्या सोचेगी, 20 रुपए का टमाटर दिया मैंने उसको। लेकिन आप गाँव में चले जाओ, गाँव में अभी भी जाता हूँ मैं, माधवानपुर घर पे जाता हूँ, तो वो ना जाने के पहले ऐसे ही मैया, प्रभु जी की मैया खेत में जाएगी और जब फ्रेश सब्जी तोड़ेगी, लौकी तोड़ेगी, फ्लावर तोड़ेगी, मटर तोड़ेगी, लींबू तोड़ेगी, हाँ ऐसा पपैया तोड़ेगी और सब भर के ये दे दो ब्रजेश्वरी को दे दो, ऐसा बोलेगी। और हम क्या सोचेंगे, देखो 50 की लौकी हो गई, 50 का पपीता हो गया और 100 रुपए के दूधी हो गया, ऐसा हम लोग गणित करते रहेंगे। तो वो कैसे हैं, दिल से आपको दे रहे हैं, वो तो सोचते रहे हैं कि मैंने इतना पपीता दिया इसको, इसके बदले में क्या देगा मुझे, वो कुछ नहीं। सो गिविंग एंड गिविंग एंड गिविंग इज द कॉन्शियसनेस ऑफ वृंदावन, दैट वी शुड अंडरस्टैंड। और क्या बताओ, और क्या बताना चाहोगे, वृंदावन घर में पैदा करने के लिए, जो भी होता है घर पे वो कृष्ण के लिए होता है, चाहे खाना बनाना हो, चाहे कुछ हो, जो भी होता है वो कृष्ण के लिए होता है, कृष्ण के आनंद के लिए होता है, क्योंकि आप कृष्ण को स्वामी मान चुके हो, हमारे स्वामी हैं। देखो वृंदावन में जाकर रहना ही वृंदावन कॉन्शियसनेस नहीं है, हो सकता है वृंदावन जाकर आप बहुत लुच्चे बनेंगे, हो सकता है बहुत वहां पर जाकर बिजनेस माइंड बनेंगे, क्योंकि यहाँ का माइंड लेके वहां गए ना आप, हो सकता है। आपका घर वृंदावन तब बनेगा जब ये चेतना अडॉप्ट करेंगे आप। दूसरी बात, अब कितना नंबर हो गया गिनती करो आप, मैं आपको अगली बात बता रहा हूँ, उसका नंबर आप बाद में बताना मुझे। अगला नंबर यह है कि पति पत्नी को बैठकर श्रीमद् भागवतम साथ में पढ़ना है, पति पत्नी को बैठकर कृष्ण के विषय में चर्चा करना है, कथयन्तु माम तुभ्यम बोधयन्तु परस्परम। और हम लोग ये करते हैं, मैं आपको ऐसे ही डायलॉग में बोल रहा हूँ, दोनों हम लोग रोज सवेरे शाम जब भोजन करते हैं तो मैंने क्या पढ़ा है, उसने क्या सुना है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोनों हम लोग अलग अलग रोज सुनते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमारा शेड्यूल है उसका, और जो मैंने सुना है मैं उसको बताने के लिए आतुर रहता हूँ और वो मुझे बताने के लिए आतुर रहती है। एंड वी डिस्कस ऑन डिनर टेबल, लंच टेबल, एवरी डे विदाउट फेल। और मैं जो लेक्चर दिया हूँ उसका डिस्कस उसके बाद करता हूँ, कभी कभी उससे पूछकर मैं कुछ बातें लेक्चर में बोलता हूँ, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट। अरे ठीक है, वो नहीं नहीं, आप लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ ठीक है, आ गया वापस में। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज, हाँ, परिवार में पति पत्नी मिलकर भगवत चर्चा करनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, ये समझना बहुत जरूरी। हाँ मैंने, आई एम देयर प्रभु जी, आई एम वेरी मच देयर प्रभु जी, मैं आपके सामने हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके साथ हूँ मैं। हाँ तो मैं आपको ये कह रहा था कि पति पत्नी को कृष्ण के विषय में एक दूसरे को बोध देना बहुत जरूरी है। घर में बैठकर केवल तुमने ये नहीं लाया, वो नहीं दिया, पैसा इतना कम दिया, क्यों दिया, तुम पति आके बोलेगा ये नहीं बनाया तुमने, आज आलू का सब्जी बनाया, पनीर का क्यों नहीं बनाया, ये इसके लिए घर नहीं है। वो तो जरूरी है, व्यवहार है, जो भी मुमकिन है होता है, जो मार्केट में मिल रहा है वो बन रहा है, लेकिन मेन आपका जो विवाह का पर्पज है, गृहस्थ आश्रम का पर्पज है, वो है कृष्ण के विषय में चर्चा। मुझे अभी भी याद है एक कहानी, एक ब्रह्मचारी था और गौर किशोर दास जी का वो डिसाइपल था, एक ब्रह्मचारी था। हाँ तो उसने ब्रह्मचारी आश्रम छोड़कर विवाह करने का तय किया। तो बाकी ब्रह्मचारी फ्रेंड्स है ना उसके, वो जाकर कंप्लेंट किए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास कि महाराज जी समझाइए उसको, वो पागल है, वो ब्रह्मचारी छोड़कर शादी करने जा रहा है, इज इन माया महाराज, माया माया में है वो। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने उनको बताया, अरे मूर्ख व्यक्ति, तुमको पता नहीं है उसको 24 घंटा एक वैष्णवी का संग मिलने वाला है, 24 घंटा वो एक वैष्णवी के संग में रहेंगे अभी वो, और दोनों सत्संग करेंगे 24 आवर्स, एक दूसरे की सेवा करेंगे, ऐसा कुछ सोचते हो आप? तो ये उनका कॉन्शियसनेस था। अभी सन्यासी देखेगा बोलेगा अरे क्या औरत को लेकर रहता है ये आदमी, ये गृहस्थ आदमी कितना माया में, बच्चे औरत पैसा घर प्रॉपर्टी कितने में फंसा हुआ ये आदमी। तो ठाकुर भक्ति में क्या बोलते हैं, गृह थाको बोने थाको सदा हरि बोले डाको, सुखे दुखे बोले ना को बोधने हरि नाम करो रे, गाय गोरा मधुर स्वरे नाम गाय भोग गौरा मधुर स्वरे। क्या बोल रहे हो, अरे घर में रहो गृहस्थ बनकर या वन में जाओ सन्यासी बनकर, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज टू चैंट द होली नेम, टू बी कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना में रहना जरूरी है। और वही वृंदावन है, जहाँ कृष्ण है वही वृंदावन है। हाँ वृंदावनम पादम न एकम एकम न गच्छति, एक कदम भी वृंदावन के बाहर वो छोड़ते नहीं कदम अपना। सो व्हाट इज दैट इम्पोर्ट, व्हाट इज दैट, दैट इज जब आप कृष्ण को घर में आह्वान करेंगे, हृदय में आह्वान करेंगे, स्वामी बनाएंगे, उन्हीं के लिए जिएंगे, उन्हीं के लिए मरेंगे, उन्हीं के लिए सांस लेंगे, तो आपका मन मोर वृंदावन, आपका हृदय वृंदावन हो जाएगा और तब आपका घर भी वृंदावन हो जाएगा। जिस घर में कृष्ण के प्रति प्रेम है और उस कृष्ण के प्रति प्रेम के वजह से पति पत्नी में प्रेम है, बच्चों पर प्रेम है, कृष्ण भावना के लिए प्रेम है, कृष्ण के लिए उन पर प्रेम करते हैं आप, उनके लिए उनकी सेवा करते हैं, आपकी सेवा करने का पर्पज कृष्ण है, तो आपका घर वृंदावन है। फिर आपके बच्चे डॉक्टर बने, धनवान बने, या सिंपल रहे, या तो गरीब रहे, जो भी कुछ रहे, कृष्ण भावना आपने उनको दिया है तो आपका सफल है गृहस्थी, आपका आपके घर में वृंदावन धाम विराजमान है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, पैसा कितना है और ऐश्वर्य कितना है, विद्या कितनी प्राप्त की है, ये तो कर्मों की बातें हैं, सबके लिए अलग अलग है। मेरी विद्या आपके पास नहीं, आपकी विद्या मेरे पास नहीं है, मेरा धन आपके पास नहीं, आपका धन मेरे पास नहीं है, वो अलग अलग गणित है उसका, लेकिन प्रेम कितना करना है ये आपके हाथ में है, मेहमानों को कितना प्रेम से रखना है ये आपके हाथ में है। मेहमान लोग जानते हैं कि आदमी कितना गरीब है, कि कितना प्रेम से हमको ट्रीटमेंट दे रहा है, जो आपको जलेबी दे रहे हैं, कचौड़ी दे रहे हैं, उसके बदले में प्रेम कितना दे रहा है, उसको ज्यादा अनुभूति आपको होती है एज अ अतिथि, एज अ मेहमान जब आप पहुंचते हो वहां पर। तात्पर्य कहने का यह है कि घर में रहते हुए इंद्रिय भोग तो हमको लालसा है उसकी, लेकिन इंद्रिय भोग से अधिक लालसा एक दूसरे के साथ वैष्णव के रूप में व्यवहार करने में होनी चाहिए, एक दूसरे को वैष्णव के रूप में देखने की चेतना होनी चाहिए कि ये मेरी पत्नी है, भोग्य वस्तु है, ऐसा ना होते हुए कि कृष्ण की एक डिवोटी है जो मेरे जिम्मेदारी में दी गई है। ये हमारे गुरु जी हमेशा बताते हैं विवाह संस्कार में। वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग, शायद वो 100% नहीं होगी हमारे अंदर आज, लेकिन हम जानते कम से कम है कि शी इज नॉट मेंट फॉर माय सेंस ग्रेटिफिकेशन, ऑल्दो आई डिजायर सो, बट शी इज नॉट मेंट फॉर माय सेंस ग्रेटिफिकेशन, शी इज मेंट फॉर माय सर्विस, आई एम टू सर्व हर, एनकरेज हर, एंड शी हैज टू थिंक द सेम वे कि दिस मैन इज नॉट मेंट फॉर माय बटन, आई प्रेस द बटन आई गेट द मनी टू एंजॉय, आई एम सपोज टू सर्व इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, assist him, encourage him, take care of him when he is not well or depressed or not in good mood or some failure is in life. My duty is to encourage him, to support him, to give him strength and help him to again rise in Krishna consciousness, not to take failure as a last thing in life. जब ये चेतना होगी तब तक घर वृंदावन है। जब आपके बेटे बेटियां भक्त बनेंगी, जब करेंगी भगवान के नाम का प्रसाद खाएगी, यात्रा में जाएंगी, विद्या का उपयोग भी भगवान की सेवा के लिए करेंगी, कला का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करेंगी, तो आपका बच्चा पैदा करना भी वृंदावन कॉन्शियसनेस है। मैं एक परिवार को जानता हूं वृंदावन में, सब सन्यासी है उसके अंदर, माता पिता और जितने बच्चे हैं सब सन्यासी, मतलब दो लड़कियां हैं वो भी ब्रह्मचारिणी है, एक ज्येष्ठ पुत्र है वो भी ब्रह्मचारी है, और एक पुत्र था उसमें से उसने विवाह किया तो ब्रजवासी घर में उसको बहुत कंडेम किया गया, अरे ये लड़का ये विवाह किया इसने, अभी क्या बच्चे पैदा करेगा, क्या करेगा पता नहीं। लेकिन वो जो लड़का था, मतलब जो पुत्र था जिसका विवाह हुआ, उसको 5 बच्चे हुए, मतलब आज के गणित से मतलब बहुत ज्यादा माया, हाँ लगता है कि केवल बच्चे ही पैदा कर रही है, ऐसे भी घर में बातचीत चल रही थी। लेकिन क्या बताऊं आपको, सारे 5 बच्चे भागवत आचार्य बने, ऑल 5 चिल्ड्रेन, 2 boys and 3 girls, भागवत पूरा अध्ययन किया संस्कृत का गुरु जी के अंडर, और सब लोग ने विश्व भर में भागवत कथाएं की हैं, और उसमें से एक प्रधान भागवताचार्य हैं एक लड़की, और आज की तारीख में भी विश्व भर में भागवत कथा कर रही है। बच्चे हो 10 भी हो चलेगा, ऐसे होने चाहिए, या 1 भी हो ऐसा होना चाहिए, हाँ, एंड फील सो हैप्पी। वो मेरे एकदम डिग्री दोस्त हैं जो जिनका विवाह हुआ है, मेरे एकदम क्लोज फ्रेंड है वो, और अभी मैं उनको 35 साल से जानता हूँ, उनके विवाह के पहले से मेरे दोस्ती है उनकी, उनके साथ में, तो उनका पूरा जीवन मेरे सामने गया हुआ है, कैसे उनको कंडेम करते थे, गाली देते थे उनको, कैसे उन पर टिका करते थे, लेकिन आज उनके 5 बच्चों में से सभी 5 बच्चे भागवत कथा करते हैं। बोलो, यू हैव रिसीव सक्सेसफुल परफेक्ट वृंदावन एटमॉस्फेयर एट होम, जो आपका फ्रूट है आपके संगम का, आपके मिलन का, वो सारा फ्रूट कृष्ण के चरणों में अर्पण है। कोई बालक को फोर्स नहीं कर रहा है आपको विवाह करना है कि नहीं करना है, एक लड़के को विवाह करना था उसने कर लिया, बाकी 4 बच्चे पूरे भागवत में लगे हुए हैं। गृहस्थी हो तो ऐसा होना चाहिए, एक चांद निकलेगा ना वो चांद आपको तार देगा, माता पिता को भी पहुंचा देगा भगवत धाम, ऐसा एक चांद पैदा कर रहे बहुत हो गया, नो नीड टू हैव 8 चिल्ड्रन, लेकिन होंगे ज्यादा तो भी अच्छा ही है, कृष्ण भक्त की फौज बढ़ेगी। डोंट कंसिडर कि अरे बाप रे 2 हो गए 3 हो गए अभी खर्चा कैसे चलेगा, डोंट थिंक लाइक दैट। कृष्ण भक्ति के जीवन में वृंदावन धाम की चेतना में कभी गणित नहीं करते हैं, क्योंकि उनको फेथ होती है कि जितने बच्चे आएंगे वो सब कृष्ण ही संभालेंगे, उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था कृष्ण ही करेंगे, अपने कर्मों के अनुसार उसको मिलेगा जो मिलना है, मैं नहीं करने वाला हूँ, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, आई एम सर्वेंट, मैं खाली कोशिश कर रहा हूँ, बाकी रोटी अपने कर्म से खा रहे हो, या तो जलेबी खा रहे हैं या तो सूखी रोटी खा रहे हैं, अपने कर्म से खा रहे हैं, मैं उनका सेवक हूँ बस, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ये मेरे फादर में मैंने देखा हुआ है, मेरे घर में देखा हुआ है मैंने, हम लोग 8 बच्चे हैं, हाँ, 8ों को अच्छा रिष्ट को शरीर दिया, 8ों को अच्छा एजुकेशन दिया, 8ों को अच्छा खाना दिया, बट नॉट नेसेसरीली कि अच्छे कपड़े दिए और गाड़ी घूमने को दिया और फ्लैट दिया सबको, ऐसा नहीं, बेसिक फाउंडेशनल सर्विस ही हैज डन। बाद में बोला आई हैव गिवन यू हेल्दी बॉडी एंड एजुकेशन, नाउ यू राइज ऑन योर ओन, एंड हम लोग सबने अपने आप जो आगे का काम चलाया है। लेकिन ये नहीं सोचा है कि पिताजी ने दिया ही क्या है, ना घर दिया, ना घर दाड़ कुछ दिया, कुछ गाड़ी दिया, कुछ नहीं दिया, क्या दिया पिताजी ने, ऐसे भाई बोल सकते हैं कभी, लेकिन वो फैक्ट नहीं है। जो भी था पिताजी ने दिल से दिया, प्रेम से दिया, परवरिश किया, अच्छे संस्कार दिए। हाँ, फॉर एग्जाम्पल जब खाना खाते हो कुछ चीज छोड़नी नहीं चाहिए, ये पसंद नहीं है ये मैं छोड़ दूंगा, ये अच्छा लगता नहीं है आधा ही खाएगा आधे दाने फेंक देगा, नहीं, रूल था पूरा जितना दिया है ना ये इसमें से एक कण भी यहाँ पर बचना नहीं चाहिए, मिर्ची और कड़ी पत्ता के अलावा सब कुछ पेट में जाना चाहिए, पसंद की सब्जी हो या नहीं हो। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे संस्कार दिए उन्होंने जो आज तक हमारे जीवन में कृष्ण भक्ति के जीवन में यूजफुल है, जो मंदिर में आते वही सीखा है। मैंने कई लोगों को कहा अरे तुम्हारे ये सब तत्व जो है ना मंदिर में एटिकेट्स, तो हमारे बचपन में पिताजी ने हमको सिखाए थे, हमारे घर में हम लोग रोज पालन करते थे उसको सारी चीजें। दैट मीन्स इफ योर होम इज लाइक दैट यू डोंट नीड टू लर्न एटिकेट्स फ्रॉम टेम्पल, योर होम इज योर वृंदावन एजुकेशन सेंटर, यू विल लर्न एवरीथिंग एट होम ओनली। तो ऐसा घर हम लोगों को निर्माण करना है अपने अस्तित्व में होते हुए, जब आप माता पिता हो तो आपको मेंटेन करना है कि माय हाउस हैज टू बी वृंदावन, माय चाइल्ड हैज टू बी रेज्ड इन वृंदावन कॉन्शियसनेस, देन लाइफ इज सक्सेसफुल। और बाकी बातें बताता हूं मैं आपको थोड़ी सी, वो ये है कि बिना भक्तों के संग से आपका घर वृंदावन नहीं हो सकता है। आपके घर में आपको रेगुलर सत्संग करना होगा, अभी कोविड टाइम है सब बंदी है, तो आप सत्संग करेंगे अपनी पत्नी से, पत्नी अपने पति से करेगी। कितने ऐसे घर हैं मुंबई में, रोज शाम को गरीब से गरीब घर में जानता हूँ, तीन बच्चे हैं, माता पिता है, एक पत्नी है, और गरीब से गरीब घर है, सब लॉकडाउन में है, लेकिन रोज शाम को 7 से 9 बजे तक कीर्तन करते हैं, भजन गाते हैं, सब बच्चों को सब भजन बाय हार्ट है, एक भजन प्लेयर है, एक करताल प्लेयर है, एक सिंगर है, सब लोग मिलकर डीटी वर्शिप करते हैं। हाँ, जे दिने ग्रहे ते प्रवेशे गोलोक भाए, ऐसे घर में प्रवेश करते ही गोलोक की अनुभूति होती है, ठाकुर भक्ति विनोद कह रहे हैं। तो अगर लॉकडाउन है तो अपने आप सत्संग कर रहे हैं, लॉकडाउन खुल जाएगा तो भक्तों को घर पे बुलाएंगे, उनके साथ सत्संग करेंगे, तब जाकर घर वृंदावन बनेगा, वैष्णवों का आशीर्वाद होगा, उनके चरण धूले आपके घर पे लगेगी और आपके घर पे आकर भगवान का नाम गूंजेगा, भगवान की कथा होगी उसके अंदर। हाँ, मैया बुढ़ी है वो भक्तों का दर्शन करेगी कि हमारे घर में आज भक्त आए हैं, कीर्तन हो रहा है, मैया बिस्तर पे सो रही है वो सुन रही है कि घर में कीर्तन हो रहा है, दैट इज वृंदावन। मैं गोद्रुम द्वीप में गया हूँ, मेरे एक दोस्त है वहां पर, तो एकदम गरीब है, एकदम टूटा फूटा घर है, लेकिन जब भी घर गया हूँ ना 15 से 20 आइटम का लंच खिलाया उसने मुझे, 15 to 20 आइटम्स, 5 मिनिमम सब्जी, 5 प्रकार के राइस, 2 प्रकार के पकोड़े और 3 प्रकार के स्वीट, इसके बिना उनका लंच ही नहीं होता है। बोला प्रभु जी एक ही पेट है, एक दो पेट भी दिया करो खाने के लिए तो भी साथ में अच्छा रहेगा। हर बार जब गोद्रुम में गया हूँ, झोपड़ी में जाके उनके दर्शन किया हूँ, तो मुझे ऐसा उन्होंने सत्कार किया है, बोलो। और वो वृंदावन में हमारे पास काम करते हैं, बरसाने में हॉस्पिटल में काम करते हैं, और हमको उधर भी बुलाते हैं ना, तभी भी 20 आइटम खिलाते हैं, ऐसा है। तो वृंदावन कॉन्शियसनेस मतलब क्या, दिल बहुत विशाल होना चाहिए, प्रेम से भरा होना चाहिए, देने के लिए होना चाहिए, सेवा भाव से भरा हुआ होना चाहिए, तब आपका घर वृंदावन है। और क्या बताएं, बताओ, मैं और कुछ मेरी पत्नी मुझे एक अच्छा टिप दे रही है, वो ये है कि समझो अभी आप वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं ना, आपका दिल बहुत तड़प रहा है कि भाई कब लॉकडाउन खुलेगा, कब ट्रेन खुलेगी, कब मैं वृंदावन जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसे। रोज सवेरे आंख बंद करके, एक माताजी है वो रोज आंख बंद करके पूरे वृंदावन का सैर करती है एवरी डे। मुझे अभी भी याद है मैं सऊदी अरब में था, मतलब एक तो है वो डेजर्ट रेगिस्तान, फिजिकल डेजर्ट, और वैसा भी डेजर्ट है वो, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ से भी डेजर्ट है, आप हर तरफ से रेगिस्तान है वो स्पिरिचुअली रेगिस्तान है और हर तरफ से रेगिस्तान है, कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे अभी भी याद है, मैं 3 बार गायत्री करते समय 3 बार 8 मंदिर के दर्शन करता था रोज मन में, मदन मोहन, गोविंद जी, गोपीनाथ जी, राधा रमन जी, दामोदर जी, श्याम सुंदर जी, गोकुलानंद जी, बांके बिहारी, राधा वल्लभ, ऐसे में 8 मंदिर का रोज मन से पूरा दर्शन करके प्रार्थना करके मेरी गायत्री होने के बाद में उठता था रोज 3 बार। तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है उसके लिए। सऊदी अरब जैसे देश में रहता था मैं, विरोधी देश में, यहाँ पर फोटो भी भगवान का अलाउड नहीं है, लेकिन मेरे मन में जो वृंदावन है उसको कौन छीन सकता है? Who can steal? खाली आपको लेने की कमी है बस, that's all. Who can stop you? मैं जा रहा हूँ बाथरूम जाने के लिए जा रहा हूँ और वहां बैठ के गायत्री करके आता था चुपचाप अंधेरे में। अभी भी याद है मुझे, एक खाली ऑफिस में बैठ के अंदर दरवाजा बंद करके आई वुड चैंट माय गायत्री एंड आई वुड विजिट ऑल द प्लेसेस 7-8 टेम्पल्स एंड कम बैक 3 times a day। तो ये एक और एक बहुत सुंदर तरीका है आपके घर को वृंदावन बनाने का। जो भी आज तक आपने वृंदावन देखा है उसको याद करो, उस पर चिंतन करो, उस पर ध्यान करो। वो एक एक वस्तु जो है ना वो भी आपको परम शुद्ध बनाएगा और आपके घर में वृंदावन को खींचे लेके आएगा। एक एक वस्तु आपके घर पे लेके आएगा, इट विल नॉट बेरेक्ट यू ऑफ एनी डेफिशिएंसी, किसी त्रुटि से आप नहीं भरोगे। अगर आपके दिल में कृष्ण चेतना है, वृंदावन चेतना है, तो नथिंग कैन स्टॉप यू। सो लेट अस ऑल ट्राई आवर बेस्ट टू ब्रिंग वृंदावन होम, टू ब्रिंग वृंदावन इन द हार्ट। सब लोगों को प्रयास करना चाहिए।
तो यमुना माता जी यहाँ पर हॉस्पिटल में थे और उस दिन शायद राधाष्टमी थी यहाँ पर, वो कहीं जा नहीं पा रही थी, वो अपने कमरे में ही थी। जब अपने डॉक्टर दलाल द्वारकाधीश प्रभु जो है वो उनको मिलने गए शाम को, तो उन्होंने पूछा कि माता जी कैसा रहा आपका दिन, आपने क्या किया। तो उनके जो डिटेल्स है राधा वृंदावन बिहारी ना, राधा वन बिहारी, तो वो तो कनाडा में थे और प्रभुपाद जी ने उनको बताया था कि इसकी सेवा आपको करनी है जीवन भर। तो वो उन्होंने अपना इतना मतलब वो पूरे जीवन में उतार लिया था कि भले उनके जो ठाकुर जी थे उनके पास थे नहीं, लेकिन फिर भी वो उन्होंने अपने मन से उनके लिए 108 भोग बनाए और उन्होंने द्वारकाधीश प्रभु को पूरे उनके नाम बताए 108 आइटम्स के, और वो कैसे बनाए वो भी बताया। मतलब कितना डिटेल उन्होंने उस चीज का मतलब वो फॉलो किया था डिटेल में, प्रभुपाद की जो आज्ञा थी कि इनकी सेवा आपको करनी है, तो वो डिटेल्स नहीं थे लेकिन फिर भी मन से उन्होंने पूरी सेवा की थी। तो हम मन से कहीं पर भी जा सकते हैं, हमारा भगवान ने मन हमको ऐसी चीज दी है कि एक सेकंड में वो कहीं पर पहुंच जाता है, तो वो वृंदावन भी पहुंच सकता है। और वृंदावन को पूरी वृंदावन की घटनाएं और वृंदावन का जो भी मूड है वो हम मन में ला सकते हैं। जैसे प्रभु जी ने कहा कि वृंदावन इज कॉन्शियसनेस ऑफ द माइंड, वो कॉन्शियसनेस है, तो वो कॉन्शियसनेस हमको लाना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है।
हरे कृष्णा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। अभी हम लोग सवेरे जप करते हैं ना, तो जूम पे जप करते हैं आजकल। हाँ, तो रोज सुबह हम लोग सुबह 5 बजे इंडियन टाइम पे आते हैं जूम पे और जप करते हैं। तो मैं उनको रोज वृंदावन के एक दृश्य को मैं डालता हूँ उसके ऊपर। जैसे आज हमारा प्रेम सरोवर था सुबह, कल पीली पोखर था, और उसके पहले दिन और कुछ था, राधा कुंड था, तो और कल भी जब है गणपति के दिन, तो भी कल भी और कुछ दर्शन कराएंगे उनको। तो यहाँ बैठ कर जब कर रहे हैं लेकिन मन प्रेम सरोवर के किनारे हैं बरसाने में, और वहां की याद में वहां किनारे बैठकर जैसे कि वहीं बैठे हुए हैं और भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। ऐसे 50 तरीके हैं जिससे आप वृंदावन की याद कर सकते हैं। और एक बात लास्ट बोलता हूँ आपको, मैं भी कल ही पढ़ा था, प्रभुपाद ने कहा था कि एवरी डे बिफोर स्लीपिंग यू शुड रीड कृष्णा बुक एटलीस्ट लिटिल पार्ट, हाँ ऐसा बोला है. सो सी व्हाट प्रभुपाद सेड, याद रखना, प्रभुपाद सेड दैट एवरी डे यू बिफोर स्लीपिंग यू शुड रीड सम पार्ट ऑफ कृष्णा बुक, दैट वे कृष्णा विल कम इन योर ड्रीम एंड गिव दर्शन टू यू. मतलब दिन भर तो आपको मैंने बताया कैसे करना है और रात को कैसे करना है वो प्रभुपाद जी ने बता दिया है कि इन द ड्रीम ऑल्सो कृष्णा विल कम. एंड मेनी टाइम्स इन ड्रीम्स आई एम गोइंग इन वृंदावन विद राधानाथ स्वामी, आई एम विजिटिंग सम गोस्वामी, सम ईटिंग सम प्रसादम समवेयर, और आई एम गिविंग सम यात्रा इन वृंदावन, लेक्चरिंग सम प्लेस, एंड समटाइम्स एक्चुअली आई एम स्पीकिंग इन द ड्रीम सम लेक्चर ऑफ वृंदावन कथा इन सम होली प्लेस. And then I tell in the morning, yesterday night I was at this place giving katha and this is what I spoke. And because I was speaking actually in the dream, because of my own sound I woke up in the night. Because I was talking loudly, so I woke up. And then I thought, hey, I am on my bed, I am talking katha in some place. And then I slept again. So it's a great fun, you know. So Vrindavan is a very beautiful place. Vrindavan is a very capturing, tempting and overwhelming place. हाँ वो भाव विभोर करने वाली जगह है. एक बार आपको चस्का लग गया ना फिर आपको कुछ अच्छा लगेगा नहीं. एवरीथिंग इज देयर, व्हाट यू नीड इन लाइफ इज देयर इन वृंदावन. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. कोई क्वेश्चन है किसी के? ओवर टाइम हो गया.
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, दिस वेरी प्रैक्टिकल टिप्स फॉर प्रैक्टिकल हाउ वी कैन बी.
कोशिश किया मैंने जो भी है बताने का, अभी आई डोंट नो हाउ गुड वाज दैट, यू ओनली नो. तो जो ब्रिजवासी थे उनकी वजह से तो हमको ये सब कृपा हुई है कि उनको इतने पास से देखा, उनका जिंदगी, उनका समर्पण, उनका दानशीलता, उनका प्रेम, ये सब हमने 35 इयर्स बहुत पास से देखा है. उनका जिंदगी अप्स एंड डाउन, बरसाने के फैमिलीज, बरसाने के ब्रिजवासी फैमिलीज का जीवन जो है वो एकदम क्लोज से देखा है. हम भी बच्चे थे, वो बच्चे थे और वो भी बुजुर्ग हो गए, हम भी बुजुर्ग हो गए. वो सारा जर्नी हमने साथ से देखा है उनका कि हाउ लाइफ इज, हाउ व्हाट काइंड ऑफ लाइफ दे हैव लिव्ड इन फ्रंट ऑफ द आईज. तो ये इनकी कृपा है. और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि गुरुदेव उनको ले गए थे उधर और उनका परिचय हो गया उनकी वजह से. इसलिए ये जीवन में जो ऐश्वर्य है ना, ये ऐश्वर्य धन दौलत ये उनकी वजह से आई है. इनकी कृपा है, केवल हमारी कोई योग्यता नहीं है, ये उनकी कृपा है. जो वो हमको ले गए वहाँ पर, उनका परिचय करा दिया और वो हमारे और गुरु महाराज के जीवन का एक प्राइवेट कोना है. वो एक प्राइवेट स्वीट कोना है जिसमें हम लोग शेयर करते हैं हमारी रिलेशनशिप विद द ब्रिजवासीज. गुरु महाराज एंड अस वी शेयर एंड आई ऑल्सो इन्फॉर्म हिम कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है उनके घर पे, व्हाट हैपेंड टू देयर हाउस, एंड वी रिलिश इन प्राइवेट, यू नो दिस वंडरफुल ऐश्वर्य दैट वी हैव ऑफ ब्रिजवासी. एनी क्वेश्चन इज देयर, एनीबॉडी वांट्स टू आस्क? प्लीज 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 आस्क. माता जी हाथ ऊपर करें, माता जी को अनम्यूट करो. नहीं माता जी, अति चंद्र माता जी को अनम्यूट करो. हाँ थोड़ा जोर से बोलना. आपका यश जो है ना वो आपके प्रयास में है, वो रिजल्ट में नहीं है जो हो रहा है. वो किसी का हो गया और आपका नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है जिसका हुआ उससे भी अधिक कोशिश आपने की होगी और जिसका हुआ है उतने इतना एनर्जी नहीं डाला होगा उसके अंदर. तो भगवान अंतिम क्या देखते हैं? भगवान अंतिम ना अपने जीवन में वो फ्रूट भी देखते नहीं कि आपने आपके बच्चे डिवोटी बने क्या, दीक्षित हुए कि नहीं हुए, कि तिलक लगाते कि नहीं लगाते. सो आपका प्रयास आपको जारी रखना है, आपका ड्यूटी है, आपको गिव अप नहीं करना है, यू डोंट गिव अप, यू कीप ट्राइंग योर बेस्ट। आपको उनके लिए जो करना आपका कर्तव्य है वो आप करते रहिए, उसमें आपको चुकना नहीं है। एंड अगर रिजल्ट आ गया और भक्त बन गए, अच्छी बात है, और रिजल्ट आया कि नहीं बने तो भी आपका कुछ नुकसान नहीं उसके अंदर। फाइनली कृष्णा विल सी योर एफर्ट्स। सबके घर में समस्या है, ऐसा नहीं कि कुछ लोग भाग्यवान होते हैं, उनके सबके बच्चे डिवोटी होते हैं, लेकिन बहुत लोगों के घर में डिवोटियों के काउंसलर्स के बच्चे भी डिवोटी नहीं होते हैं, जब ही नहीं करते हैं। लेकिन आपको आपका संस्कार देना है उनको, आपका कर्तव्य करना है और उनके लिए प्रार्थना करना है भगवान के लिए, प्लीज लेट देम बिकम डिवोटीज ऑफ यू। तो भगवान फिर देखेंगे क्या करना है उनके साथ। हो सकता है अभी नहीं बने होंगे, एकदम अचानक एक दिन बन जाएंगे, खास करके कितने लोगों के ऐसे उदाहरण है, 20-20 साल में कोशिश किया नहीं बने, 21-21 साल में तो 20 माला रोज जप कर देंगे। हाँ मैंने देखा, मेरे पास एक्सपीरियंस है ऐसा, 20-20 साल पत्नी डिवोटी नहीं बनी, बोलो, पति डिवोटी इनिशिएटेड है, पत्नी डिवोटी ने डिस्को डांस करती है, क्या क्या करती है, 20 साल के बाद में उनके घर में डीटीज है, फुल साइज मार्बल 4 फुट के, और पत्नी 20 माला करती है, दीक्षित है, अभी पूरा कांग्रेगेशन बना है 400 लोगों का। तो समय की बात होती है, कभी कभी पेशेंस भी जरूरी है, आपको छोड़ना नहीं है। मराठी में कहते हैं चिकाटी, चिकाटी मतलब कैसा, लगे रहना है, जो भी हो जाए छोड़ना नहीं है उसको, चाहे पैसा हो नहीं हो, ये हो नहीं हो, ये नहीं था वो नहीं था, सब ठीक है, लगे रहो, छोड़ो मत उसको, और प्रसाद खिलाते रहो। वो कह रही है कुछ भी नहीं करते ना, अच्छा अच्छा प्रसाद बना के खिलाओ उनको प्रेम से, और जहाँ जहाँ जाओगे वृंदावन में कोई महाप्रसाद मिलेगा उनके लिए रखो, उनको दो, ये खाओ भैया जगन्नाथपुरी का, ये खाओ वृंदावन का, ये खाओ द्वारका का है, ये उड़पी का है, ये वृंदावन का है, मिला दे रहो, एक ना एक दिन बॉम्ब फटने वाला है उनका, डोंट वरी। यस, और क्या प्रश्न है किसी का? मदन मंजरी पूछो, कोई बात नहीं, सदानंद प्रभु को पूछना है तुम। धन्यवाद, प्रणाम। अभी वो मेरे को याद नहीं है फिलहाल, नहीं हो सकता है, वृंदावन आपके घर में कैसे बनाना है ये आपका विषय था आज का, तो हो सकता है तो उस पर कुछ हरे कृष्णा। यस she makes on corona times, she calls up my younger daughter on phone on video call and she makes bird sounds. एंड माय यंगर डॉटर हियर्स एवरी डे सम टाइम्स इट शी कॉल्स अप सब सब गुरु जी की कृपा है इज ऑल द मर्सी ऑफ गुरु महाराज हु हैज मेड आवर लाइफ यू नो वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्स्ट थिंग्स इन लाइफ हैव बीन टर्न इनटू ब्लेसिंग्स बाय द मर्सी ऑफ गुरु सो दैट इज द सीक्रेट ऑफ द लाइफ नथिंग एल्स It's all yours, Prabhuji. What is there? Everything what we receive is all yours. What is there to hide it? It's all to be shared only. All wonderful things in life to be shared with others. Then we get more, you know. When we share, we get more. That's how it is. That's the secret. Anything else? Anybody wants to say?
Yes, but what's the one to stand for? You have some question to the
जय असिवानंद प्रभु की जय हो यस प्रभु
प्रभुजी इट वाज नाइस एंड आई थिंक पास एंड यू गिवन लाइक यू नो इट इज प्रैक्टिकल लाइक व्हेन यू आर टॉकिंग आई कैन फील इट दैट इट इज कमिंग फ्रॉम इट इज नॉट यू नो सम टाइम वी हियर इन द लेक्चर इट्स नॉट प्रैक्टिकल नो वी कैन फील दैट हाउ इट वाज कमिंग इट इज लाइक कमिंग फ्रॉम इनर इट इज नॉट यू नो लाइक इट इज रियल दैट वाज वेरी एनलाइटनिंग गुड एंड I had to listen. Many doubts were okay. Many of the doubts, it is itself it was clearing when you are talking. I have small skill because, like, you know, these children's wife, like, God is sending us. They are devotees. But we may do some, you know, knowing that now it is like mistakes or offenses like that. How we can take that, you know, like it's offense or, you know, sometimes it will happen in the family life.
We are all in a progressive path. Nobody is perfect. And even after 50 years, we will not become perfect. But we are on the progressive path. And whenever you feel that you are a mistake, please beg pardon immediately. Say sorry, beg pardon. Whether the husband has to say to wife also doesn't matter. Wife should say to husband doesn't matter. Whoever feels that he has a mistake, don't hesitate to go forward and say sorry and improve upon that. This is Grihastha Ashram is not the game of ego. It's a real game of humility. How much humility you acquire and see each other as Vaishnavas, not as husband and wife, men and women, male and female. We see each other as Vaishnavas, that we have received a Vaishnava very fortunately to associate and to stay together, to fulfill needs of each other, to serve each other in Krishna consciousness. So, mistake will be there. Today also we fight, tomorrow also we'll fight. That's all right. But finally, where we are, that is very important. So, I fight with her and then 8 days I don't talk to her, I don't eat at home, I eat outside. That's not Grihastha Ashram. When two people will come together, they will fight. What is the problem in that? We should accept that. It's a part of life. But we should resolve that my wife is very expert in this. I may keep it in mind for one day, but she will forget in 1 hour. And I may talk like that, but she will forget also before only. She will forget everything. So it's a very wonderful quality that I may get upset and I will not, 5 hours or one day I will not talk, and then she will be normal after 1 hour. Nothing is in mind. That is very great quality. So, suppose I am angry, then she has to be mild and soft, and when she is angry, I have to be soft, and you balance each other. So one party holds and finish, then oh, what is there in life? There is no time required to break, you know. But when we stay for, suppose, 30 years, 40 years, 50 years, I did one yajna of one couple of 60 years of marriage. I did one yajna for them, 60 years of marriage, Sahadev Prabhu and his wife Sucharita Mataji. So I said, Mataji, Prabhuji, I was a Purohit, of course, Brahmin. But I bowed down to them. I said, Mataji, Prabhuji, 60 years, matlab, how many times you must have fought, how many times there must be misunderstanding, but you stayed together and you are still happy together. That is something, great achievement. And to kya hai, love at first sight, divorce at first fight. That is the today's story. But long duration of association means long kind of acceptance, long tolerance, long overlooking faults, long time overlooking faults of others and playing together. So it's all right. It doesn't matter.
Yes. Thank you. Nice.
Yes. Yes. Ranjit Prabhu, you want to ask a question? Yes.
Thank you, Hare Krishna Ji, Dhamma Pranam.
Yes.
Prabhuji, बहुत बहुत धन्यवाद. आपने बहुत सुंदर रूप से बताया कि हम अपना ग्रह को कैसे वृंदावन में परिवर्तित करने का प्रयास करें, परंतु इसके साथ ही प्रभु जी आपने बताया गांव वास के बारे में.
हाँ.
कि किस प्रकार से यहाँ पे पकड़ लिया जाते हैं या फिर व्यक्ति वहाँ पे स्थायी रूप से रहते हैं, फ्लैट लेते हैं. प्रभु जी जब हमारे मुख्य चर्चा का विषय था कि कैसे घर को हम वृंदावन बनाए,
yes.
तो इस परिप्रेक्ष में हम कैसे धाम वास का महत्व समझे, और फिर जैसे हमें पता चलता है सूर्य की आचार्य ठाकुर श्री गौतम दास ठाकुर ने उन्होंने धाम वास के अपराधों से भी बहुत सचेत किया, तो उसका महत्व फिर हम कैसे समझे कि धाम वास करें, और उसका फिर जब हम अपने परिवार अपने घर को हम वृंदावन प्रवेश करना चाहते तो इसका फिर महत्व किस प्रकार
तो धाम में जो अपराध है लागू है तो घर पे भी लागू है, ध्यान रखना इस बात का. अगर आपका घर आपको वृंदावन जैसे बनाना है तो आपको घर पे भी वो अपराध नहीं करने जो धाम में करते हैं. सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपराध जो है वो वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए. जैसे प्रभु जी ने पूछा अभी प्रश्न की भाई झगड़े होते कभी कभी कैसे करना है, तो आपको याद रखना है कि आपकी पत्नी और आपके पति ये वैष्णव है, डोंट फॉरगेट. बच्चे भी आपके वैष्णव हैं, हाँ. बेटी भी हमारी इनिशिएटेड है, उसका दिल नहीं दुखा सकते हम वो झगड़ा करेंगे, वाद विवाद करेंगे, मतभेद होगा हमारा, बट उसका दिल नहीं दुखा सकते हैं, वो वैष्णव ही है. वैसे ही हम झगड़ा करेंगे लेकिन इतना झगड़ा नहीं करेंगे जो इतना दिल दुखेगा कि जिंदगी भर याद रहेगा, ऐसा नहीं. तो वो जो वैष्णव अपराध है वो केवल बाहर नहीं होता है घर के बाहर, वो घर पे भी होता है. उसके लिए पहले आपको सावधान रहना है, और फिर वो सब बातें जो है ना वो टू कंसिडर वृंदावन धाम एज नॉट डिफरेंट फ्रॉम मायापुर एंड नवद्वीप, ये भी आपको ध्यान रखना है. हाँ, जो भी 10 अपराध दिए धाम के खिलाफ वो सब आपको याद रखना है, और वो घर पे आपको पालन करने हैं. देखो, आपको अगर घर अपना बनाना है वृंदावन ना, तो आपको पूरा होलसेल बनाना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि पार्टली ये नहीं करूँगा, ये करूँगा, इतना ही करूँगा, तो पूरा वृंदावन कैसे घर पे आएगा आपके? नहीं आएगा ना. तो आएगा, आपको सावधान रहना है. अल्टीमेटली क्या है, इट इज कॉल्ड एज कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना, कृष्ण की चेतना है ये. जो कृष्ण की चेतना आप अपने दिल में बना दे रहे हो ना, यू आर कल्टिवेटिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस इन द हार्ट. तो उसका और एक डेफिनेशन है कि जैसे कृष्ण देखते हैं वैसे आपको देखना है. वन मोर डेफिनेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, व्हाट इज द अदर डेफिनेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस? The way Krishna sees things, you have to learn to see those things. The way Krishna sees, from his point of view. So, जैसे आपके घर में कृष्णा आपके बीवी को कैसे देखते हैं वैसे आपको देखना है. कृष्णा आपके बच्चों को कैसे देख रहे हैं वैसे आपको देखना है. कृष्णा आपके धन को कैसे देखते हैं वैसे आपको अपने धन को देखना है. कृष्णा आपके घर में आए मेहमान को कैसे देखते हैं वैसे आपको देखना है. So, if you learn to see the way Krishna sees, then your house is Vrindavan. For how to learn that, you read in 10th canto of Krishna, Srimad Bhagavatam, how Krishna dealt with his devotees and how Krishna dealt with his gopis and cows and his family members, Yashoda Devi, Nanda Maharaj, Yoyani Devi, Vasudev, Devaki, kaise vyavahar kiya unhone humke saath mein? Kaise vyavahar kiya? Bahut sundar. Aise bhi humko karna hai. ये देखना नहीं कि मम्मी 90 ईयर्स की होगी, कितना बोझ हो गया, पता नहीं कब जाएगी, कब से जी रही है, पता नहीं यहाँ से वहाँ जा रही है, कितना टेंशन है उसके बारे में. ऐसा नहीं है. जब तक है आपका ड्यूटी है उसको प्रेम से देखना है, कोई भी उसमें कसर नहीं करनी है. देखो, 11 साल के बाद वो मथुरा से वृंदावन गए, नहीं वृंदावन से मथुरा गए और चरणों में गिर गए वसुदेव देवकी के. बोले 11 साल से आपका सेवा नहीं किया है, माफ़ करना, ऐसे समय था हमको वृंदावन में रहना पड़ा, अभी आ गया हूँ, बताइए क्या आज्ञा है हमारी. तो माता कहती है कि आपको गुरुकुल नहीं भेजा, आपका संस्कार नहीं किया, जनी संस्कार नहीं किया, अभी आप रहो यहाँ पर, वो सब करेंगे. बोले जैसे आपकी आज्ञा है, वही रह गए. तो क्या ऐसा लिखा है उसमें कि चरणों में गिर गए उनके वसुदेव देवकी के, और वसुदेव को थोड़ा संकोच हो रहा है, अरे भगवान है वो मेरे चरणों में गिर रहे, मतलब पता है उनको कि बेटे हमारे लेकिन भगवान तो है, मालूम था उनको, तो भगवान को अच्छा नहीं लगा। तो भगवान ने क्या किया, उनको तो गले मिलना था, वात्सल्य का अनुभव करना था, तो उन्होंने ना जगन मोहिनी माया का प्रभाव डालकर उनको ये ज्ञान छीन लिया उनका कुछ समय के लिए कि मैं भगवान हूँ। तो जैसे ही वो ज्ञान छीन गया ना, वात्सल्य ऊपर निकल गया, तुरंत उसने उठाया बच्चों को दोनों को और गले लगाया। सुखदेव जी लिखते हैं जगन मोहिनी माया का प्रचार उनको उन पर वे किया, उन्होंने प्रभाव डाल दिया और फिर भगवान को गले लगाया और आंसू बहाए, दोनों को आंसुओं से नहलाया और कृष्ण कृष्ण करके गले लगाया। इतना प्रेम का अनुभव करते हम लोग कृष्ण लीला में भगवान का, उनके भक्तों का। अरे गाय भी रोती थी भगवान के लिए, याद करते हुए सोचो, बंदर भी रोते थे, इतना प्रेम दिया है। तो यही प्रेम है, वही वृंदावन है। ओके, एनीथिंग एल्स?
थैंक यू सर।